बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे।
हालेलुया,
बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे।
हम इसी रूह में खुदावन खुदा के जुड़ चुके रहेंगे और उसके कलाम के लिए सब दुआ मांगेंगे, क्योंकि उसने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। कि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो कोई चाहता है खोला जाएगा, जो ढूंढता है वो पाएगा। दबावा की शान है उस पर, हमें विश्वास है खुदा खुदा एक एक जीव के लिए खुदा ने दिया पूरा तेरा कलाम आज का कलाम एक हमारे मनजी यीशु मसीह के नाम को मिले। हम सब कम होते जाए, तू बढ़ता जाए, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, तेरे नाम की तारीफ हो और सारा जलाल तेरे बेटे हमारे मनजी यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। और हम सब कम होते जाए और तू बढ़ता जाए, यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन। यीशु मसीह की हजूरी और उसके जलाल के लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। आज की शाम जो बहन भाई बाइबल मुकद्दस लेकर आए हैं मेरे साथ, निकाले नए अहदनामा में से इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत। हम उसका पहला बाप, हम उसकी 13वीं आयत पर गौर करेंगे, 13वीं आयत पर गौर करेंगे और यहाँ पर से खुदा के कलाम में से बहुत ज़बरदस्त सच सीखेंगे, जो क्या है जी, रूहानी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। क्योंकि जब हम इफिसियों के खत का हम मुतालिया करते हैं तो इसके कुल 6 बाप हैं और इन 6 अबवाब में 155 आयात पाई जाती हैं। और 155 आयात को जब हम गिनना शुरू करते हैं तो पहले बाप की कुल जो है वो 23 आयात हैं और इन 23 आयात में पौलुस रसूल ईमानदारों को क्या बयान करता है, मसीही ईमानदार का मकाम, कि उसका दर्जा खुदा में क्या है, उसकी हालत क्या है, उसका मकाम क्या है, जो खुदावन खुदा ने मसीह यीशु में हर बंदे और बंदी को जो यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल करता है रखा है। इसलिए इफिसियों 13 बाप उसकी पहला बाप उसकी 13वीं आयत आप सबके लिए पढ़ूंगा। और खुदा का कलाम यूं कहता है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। और 14वीं आयत भी आप सबके लिए पढ़ देता हूं, वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सताइश हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। जब हम इन आयात को देखते हैं तो ये बाप के इस पहले हिस्से की आखिरी दो आयात हैं, क्योंकि जब हम पौलुस रसूल को देखते हैं तो वो जब लिखता है इस बाप को तो इस बाप की पहली 13 आयात क्या है जी, एक पैरा है जिसे पैराग्राफ कहते हैं। ये एक पूरा पहरा है जो यूनानी जबान में हमें मिलता है, क्योंकि जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में हम आज अपने दौर में उसे समझने के लिए बापों और आयात में क्या करते हैं जी, अलग अलग करते हैं या तकसीम करते हैं। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस को यूनानी तर्जमे में पढ़ते हैं तो यूनानी तर्जमे में मिसाल के तौर पर अगर हम पहाड़ी वाज को पढ़े तो पहाड़ी वाज आज हमारे दौर में समझने के लिए 5 बाब की पहली आयत से शुरू होता है, और हम समझते हैं कि जी 5वें बाब की पहली आयत से 12वीं आयत पर क्या है जी, पैगाम खत्म हो गया। नहीं, जब हम यूनानी में पढ़ते हैं तो, और जब उर्दू में पढ़ते हैं तो 5वें बाब को अगर पहली आयत को लगातार पढ़े तो 5वां बाब, 6ठा बाब और 7वां बाब, ये क्या है जी, मुकम्मल एक पैगाम है। इन 3 बापों को जब इकट्ठा करें 5, 6 और 7 तो क्या बनता है जी, एक पैगाम बनता है। और इस पैगाम को यीशु मसीह ने एक ही जगह पर बैठकर दिया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पहाड़ी वाज कहते हैं। उसके बाद एक और पैगाम को देखते हैं, ये पैगाम यीशु मसीह का दूसरा पैगाम है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी के दौरान تین بڑے پیغام دیے جو اس کے کیا ہے جی، شریعت کو بیان کرتے ہیں، آخری ایام کو بیان کرتے ہیں، اور کلیسیا کی نبوت کو بیان کرتے ہیں کہ کلیسیا کس طرح وجود میں آئے گی۔ سو پانچ باب سے ساتویں باب کو پہاڑی آواز کہا جاتا ہے متی کی انجیل۔ اگر آپ کو وقت ملے تو جب آپ کو پڑھیں گی تو پتہ لگے گا کہ یسوع پہاڑ پر بیٹھ گیا، اور جب وہ تعلیم دے چکا ساتویں باب کی آخری آیت میں، اور وہ پہاڑ سے نیچے اتر کر کیا جاتا ہے کسی دوسرے علاقے میں جاتا ہے۔ اس پورے تین باب میں کہیں پر بھی کیا ہے جی، تقسیم نہیں کیا گیا، بلکہ یسوع مسیح نے مختلف ٹیچنگ دی ہے۔ اور دوسرا پیغام جو دیکھتے ہیں وہ ہمیں ملتا ہے متی کی انجیل اس کے 23, 24 اور 25 باب میں، اسے کیا کہتے ہیں، زیتون کے پہاڑ پر جو پیغام دیا گیا۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا ہے، اور 23 باب سے لے کر 25 باب تک کیا ہے جی، وہ نبوت کر رہا ہے اور کہتا ہے اے یروشلم، اے یروشلم، میں نے کتنی بار چاہا، جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے، میں نے چاہا کہ تم میرے لیے میں ایسا کروں، پر تم نے نہ چاہا، اس لیے تم سے تمہاری سلامتی چھپ گئی۔ تم اپنی سلامتی کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے یروشلم برباد ہوگا۔ سو 23 باب سے لے کر 25 باب تک کیا ہے جی، ایک پیغام ہے جو آخری ایام کے بارے میں ہے، اور وہ کس پہاڑ پر یسوع مسیح نے بیٹھ کر دیا، زیتون کے پہاڑ پر۔ اور تیسرے پیغام کو دیکھتے ہیں، جو تیسرا پیغام یسوع مسیح نے دیا وہ کہاں پر دیا، جب ہم یوحنا کی انجیل 13 باب کے پہلی آیت سے لے کر 17 باب کے آخر تک پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہے جی، ایک پیغام ہے، اور یہ کہاں پر دیا، بالا خانہ میں۔ بالا خانہ میں اس رات جب یسوع مسیح نے پکڑوائے جانا تھا، اس رات جب یسوع مسیح نے جان لیا کہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، جس مقصد کو وہ پورا کرنے کے لیے آیا، خدا اسے جلال دے گا، اس نے جان لیا کہ ان 12 میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا اور باقی سب تتر بتر ہو جائیں گے۔ اس نے ان کے پاؤں دھوئے، ان سے اس نے کہا کہ گھبرانا نہیں، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھنا، اور پترس کو کہا کہ تو مرغ کا پانکھ دینا تب تک ممکن نہیں ہوگا جب تک تو میرا 3 دفعہ انکار نہ کر دے۔ اور اس کے بعد 14 باب، پھر 15 باب، یسوع مسیح کو بیان کرتا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ اور 16 باب میں خداوند یسوع مسیح کلیسیا کے وجود کی روح القدس کے آنے کی نبوت کرتا ہے کہ روح القدس دوسرا مددگار آئے گا، میں جاتا ہوں اور تھوڑے وقت کے لیے تم سے جدا ہوں گا اور واپس آؤں گا، اور تم پھر کیا ہوگے جی، غمگین نہیں ہوگے، دنیا مجھے نہیں دیکھے گی پر تم مجھے دیکھو گے، اور میں تمہارے اندر اور تمہارے درمیان اور تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا 16 باب میں، میرا جانا ضرور ہے تاکہ دوسرا مددگار آئے۔ اور 17 باب میں یسوع مسیح نے کہانت کے طور پر، کاہن کے طور پر کیا کی ہے جی، دعا کی ہے۔ سو 13, 14, 15, 16, 17 باب یہ کیا ہے، یسوع مسیح کا آخری پیغام ہے۔ یہ کون سا پیغام ہے، بالا خانہ پر دیے جانے والا پیغام۔ بالا خانہ کون سی جگہ ہے، وہ جگہ جب یسوع یروشلم میں داخل ہوا اور شہانہ داخلہ کے بعد اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ میں آخری فسا کہاں پر کھاؤں گا، اس جا کے بندے کو کہنا کہ مالک نے کہا ہے کہ میرے لیے بالا خانہ تیار کرو، اور وہاں پر اس نے اس رات بیٹھ کر یہ سارا پیغام دیا۔ اس سے پہلے وہ گسمنی باغ میں جائے اور 3 دفعہ دعا کرے، 3 دفعہ اپنے شاگردوں کو آ کر کہے، اور آخر میں کیا ہوتا ہے جی، وہ کہتا ہے کہ اب میرا وہ وقت آ چکا ہے، اور یہودا اسکریوتی جو بالا خانہ میں چھوڑ کر جاتا ہے گسمنی باغ میں آتا ہے، اور اس کے لیے نشان کیا تھا، سپاہیوں کو ساتھ لا کر جس کا بھوسا میں لوں گا وہی مسیح ہے۔ وہ آتا ہے، اس کا بھوسا لیتا ہے، اسے پکڑواتا ہے، یسوع وہاں پر کیا کرتا ہے، جاتے جاتے معجزہ کرتا ہے، اور یسوع مسیح ایک نہیں بلکہ 2 معجزہ، جب اس نے کہا میں ہوں اور تمام سپاہی گر جاتے ہیں۔ اس کی قدرت، اس کے جلال کو جس حضوری میں پرانے عہد نامے میں جب جب یہوہ بولتا تھا کیا ہوتا تھا، ہر ایک گھٹنا جھک جاتا تھا، انہوں نے کہا کون ہے، اس نے کہا میں ہوں۔ یہ میں ہوں وہی ہے جس کے لیے یسوع خداوند کا کلام کیا کرتا ہے، خروج کی کتاب میں موسیٰ سے کہتا ہے میں ہوں جو ہوں سو میرا نام ہے، جا کر بنی اسرائیل قوم کو کہنا میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ तो ये 17वें बाप से 13वें बाप से लेकर 17वें बाप तक क्या है जी, एक पैगाम है। क्यों ये सब कुछ बताना दरकार था? क्योंकि जब हम इफिसियों के खत को पढ़ते हैं, इफिसियों के खत को जब पढ़ते हैं तो उसकी पहली 13 आयात क्या है जी, एक सांस में पढ़े जाने वाला क्या है जी, पैराग्राफ है। और इसको पैरे में कहता है, मैं खुदावंद पालूस रसूल खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से क्या हूँ जी, रसूल हूँ, और इफिसियों की कलीसिया के मुकद्दसीन को सलाम कहता हूँ, और हमारे खुदा बाप और खुदावंद की हमद हो जिसने तुम्हें आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी, उसने तुमको पेशतर इसमें चुन लिया कि उसमें उसके वसीला से उसके क्या हो जी, चुने हुए प्यारे अजीज बेऐब और बेदाग क्या हो जी, लोग हो। वो एक सांस में इस पूरे पैरे को पढ़ता है। इसलिए मैंने चाहा कि आज शाम हम इस बात पर गौर करें कि पालूस रसूल कहता है, जब आप इस खत को पढ़ें इसमें लाजमी, जब बाइबल को पढ़ें तो लाजमी इसको उसको उसी में उसके वसीला से इस तरह इन लफ्जों पर लाजमी गौर करें, क्योंकि उसी में बहुत दफा हमें समझ नहीं आती किस में, और जब हम सवाल उठाते हैं उसी का मतलब क्या है तो हमें पता चलता है कि ये उसी का मतलब क्या है। यहां पर लिखा है 13वीं आयत में, उसी में हम पर भी, किस में, खुदा में, किसके वसीला से, उसके अजली अरादा के मुआफिक। ये 11वीं आयत है, और उसके बाद फिर 13वीं आयत में पढ़ते हैं, उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना, किस में, खुदावंद यीशु मसीह में, जब खुदा में जब तुमने खुदावंद यीशु मसीह का कलाम हक सुना तो क्या हुआ है जी, तुम्हारे लिए कुछ हुआ था। और वो क्या कहता है यहां पर, वो कहता है और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की क्या है जी, खुशखबरी है। ईमान कैसे पैदा होता है जी, और सुनना कहां से पैदा होता है जी, मसीह के कलाम से। यहां पर पालूस रसूल इस एक आयत में पूरी रूहानी जिंदगी का बयान करता है, मां की गोद से लेकर इब्राहिम की गोद तक। यह है मसीही सफर, मां की गोद से लेकर आसमानी बाप की गोद तक, और इसके दरमियान क्या कुछ होता है वो सब पर रौक करवाता है, और कहता है तुमको क्या हुआ है जी, पहली बात कि तुमको खुदा में क्या हुआ है जी, जब कलाम हक सुनाया गया जो तुम्हारी निजात की क्या है जी, खुशखबरी है। और खुशखबरी जब सुनाई जाती है तो ये क्या है जी, एक बीज बोने वाला बीज बोने को निकला, और जब वो बीज बोया जाता है कुछ राह के किनारे, कुछ पथरीली जमीन पर, कुछ क्या है जी, झाड़ियों में, और कुछ हरी भरी जमीन पर। जो राह के किनारे हैं वो क्या है जी, दब जाता है, जड़ नहीं पकड़ता। जो झाड़ियों में गिरता है रोशनी ना मिलने की वजह से वो क्या है जी, कभी भी ऊपर नहीं आता। जो पथरीली जमीन में है वो कभी भी जड़ नहीं पकड़ता, और थोड़े वक्त के लिए है, जैसे ही रोशनी, जैसे ही कोई मौसम की तब्दीली आती है, जड़ ना होने के बायस वो बीज क्या होता है जी, कभी भी परवान, इस निम की तरह कभी भी वो मजबूत नहीं बनता। लेकिन जो बीज सरसब्ज जमीन पर गिरता है वो क्या करता है जी, सही तरीके से बोया जाता है, फलता है, फल लाता है, और क्या करता है जी, बरकत का बायस बनता है। आज की शाम भी जब कलाम सुनाया जा रहा है तो कलाम का बीज बोने वाला निकला। बोने वाला कौन है जी, इब्ने आदम है। रूहुल कुद्दस क्या करता है, उस कलाम को क्या करता है, पानी देता है, पानी देता है कि खुदा के कलाम की तफसीर को, समझ को हमें समझने का अदराक और फहम दे। ये बड़े लफ्ज है, यानी कि समझ देना, अकल देना, हिकमत देना कि क्या कुछ हो रहा है, सुनाया जा रहा है, उससे हम क्या पा सकें जी, फायदा पा सकें। तो पहला अमल क्या है जी, कलाम सुनाया जाना जो खुशखबरी का बास बनता है। दूसरा अमल क्या होता है जी, जो कोई इस पर ईमान लाता है, जो कोई इस पर ईमान लाता है। बाइबल मुकद्दस में 2 का अदद बहुत ज्यादा मिलता है। आपको 2 के अदद से कोई वाक्या याद है, कि 2 का अदद का वाक्या याद हो पुराने नए अहदनामा में? 5 बेवकूफ कुवारियां, 5 अकलमंद, 2 का अदद। 1 अकलमंद आदमी वो जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और बेवकूफ आदमी वो जिसने अपना घर रेत पर बनाया। और कहीं पर दो का जिक्र, बागे अदन में क्या थे जी, दो दरख्त लगाए गए थे, एक जिंदगी का जो आबे हयात का दरख्त था और दूसरा क्या था जी, नेको व बद की पहचान का, जो उसको खाएगा वो क्या होगा जी, मौत हासिल करेगा। और जी दो का आदत, दो दो शिगिर्द भेजे थे यीशु मसीह ने, दो दो शिगिर्द यीशु ने भेजे थे, जाकर क्या करो जी, मुनादी करो। और क्या जी, दो का आदत के साथ यीशु मसीह ने दो अंधों को शिफा दी। और दो के आदत के साथ क्या मिलता है जी, इस पर सोचे, दो के आदत से बहुत कुछ मिलता है। यहां पर हम जब देखते हैं, यहां पर क्या है, उस पर ईमान लाए तो पाक मौदा रूह की क्या मिली है जी, मोहर मिली है, मोहर लगी है, मोहर लगी है। यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने पर कितने फरिश्ते इमाल की किताब में आकर कहते हैं गलीली मर्दो, कितने थे जी, दो थे। दो की गवाही क्या है जी, सच्ची मानी जाती है। दो की गवाही क्या है जी, सच्ची मानी जाती है। जब यीशु पहाड़ पर था तो कौन कौन उस पर जहर हुआ था उसके साथ, एलिया और मूसा। दो की गवाही क्या है जी, दो के अदद का मतलब है कि एक की गवाही से क्या है जी, दो की गवाही भली है, सच मानी जाती है। शरीयत के मुताबिक अगर कोई गवाही किसी के खिलाफ दी जाए तो एक की गवाही सच्ची भी हो तो झूठी मान ली जाती थी। उसके लिए कितने गवाह होने चाहिए थे जी, दो शहादतें। सो यीशु मसीह को मिलने के लिए पहाड़ पर दो गवाह आए, और यीशु मसीह का जब क्या है जी, दोबारा वापस आना होगा तो कितने गवाह होंगे जी, मुकाशवा की किताब के मुताबिक दो गवाह आएंगे जो मनादी करेंगे, वो कौन होंगे, मूसा और एलिया, इससे पहले दुनिया की अदालत की जाए। सो यहां पर मैं चाहता हूं कि हम इस बात पर गौर करें, यहां पर खुदा का बंदा क्या कहता है, तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात का बाश हुआ और उस पर ईमान लाए। ईमान लाए, ईमान से क्या मिलती है जी, हमें निजात मिलती है, निजात मिलती है। और आज हमें दुनिया में जो बहुत सा फसाद नजर आता है, बहुत से लोग जो कहते हैं जी रूल कुदस के वक्त उसमें के तलक से, रूल कुदस के वक्त उसमें के तलक से बहुत से लोग गलत तालीम की तरफ लेकर जाते हैं। इस आयत के मुताबिक रूल कुदस हमें कब मिलता है, जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं है। मेरे साथ जरा दोबारा इस आयत को पढ़ें, उसी में हम पर भी उस, सॉरी मैं 11वीं आयत पर, 13वीं आयत पर, उसी में तुम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना, कलामे हक को जब तुमने सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक मोहदा रूह की मोहर लगी। पालूस सूल ग्रामर के लिहाज से कह रहा है कि जब तुमने खुदा का कलाम सुना था और जब तुमने सुन लिया तो उस पर ईमान लाए, और उस ईमान लाने के दौरान क्या हुआ है, तुम पर पाक रूह की क्या हुई है जी, मोहर हुई है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि जी कोई अगर ईमान ले आए तो रूह कुदस उसको बाद में मिलता है, बाइबल मुकद्दस ऐसी तालीम नहीं देती, बाइबल मुकद्दस ऐसी तालीम नहीं देती, क्योंकि हम रूह के बगैर खुदा को बाप नहीं कह सकते। मेरे साथ चंद एक हवाला जात देखें, रोमियो उसका 8 बाब उसकी 15वीं आयत को जरा देखें, अगर कोई निकाल सकता है जल्दी से निकाल कर पढ़ दे, वरना मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। रोमियो, रोमियो 8 बाब उसकी 15 आयत, यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल इस बात को बड़े वाजिया तौर पर कहता है और सिखाते हुए कहता है कि हमें इस सच को समझने की जरूरत है। 8 बाब उसकी 15 आयत में यूं लिखा है जी, हाँ जी क्या कहता है जी, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे क्या हो जी, फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली है जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। और आगे 16वीं आयत में क्या लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। और यूहन्ना एक बाप उसकी 12 आयत में क्या लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया खुदा ने उसे क्या दिया है जी, अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। अगर कोई निकाल ले तो पढ़े, क्योंकि बाइबल मुकद्दस पढ़ने से हमें क्या है जी, वजाहत मिलती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस क्या है, खुदा का कलाम और अल्हाम है। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाप जब 12 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें और वजाहत से मिलता है कि उसमें किस में ये बात हो रही है। जब हम यूहन्ना की इंजील को पढ़ते हैं तो यूहन्ना की इंजील में हमें पहले ही बाप में था थी थे थी था का जिक्र बहुत ज्यादा मिलता है। और यूहन्ना पहला बाप उसकी 12 आयत में क्या लिखा है जी,
लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के प्रधान बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाए, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए।
किससे पैदा हुए जी, खुदा से। 12 आयत में क्या लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया, किसे, यीशु मसीह को। जितनों ने, जितनों में कौन आ जाते हैं जी, गरीब, अमीर, छोटा मोटा, पतला, किसी भी जात पास से तल्लक रखने वाला क्या है जी, बंदा बंदी, किसी भी उम्र का, जितनों ने, जितनों ने क्या किया है, उसे कबूल किया, किसको, खुदा यीशु मसीह को। और आगे क्या लिखा है, उसने उन्हें, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, हक बख्शा। अगर ईमान से कबूल करने से हम फर्जंद बनते हैं तो ईमान के पैगाम को सुनने से हम रूहुल कुद्दस का मकदस बनते हैं। उन बातों को, उन तालीमात को मत सुनिए जो आपको कहते हैं कि जी आज आपने निजात पाई है और इसके लिए कोई 6 साल इंतजार करना होगा, रूह कुदस मिलेगा आपको। उस 6 साल के सफर में आपको क्या करना होगा जी, आपको हर वो जतन करना होगा ताकि आप पहले क्या करें जी, पहले तो आपको क्या मिलेंगे जी, ख्वाब मिलेंगे, आप ख्वाब देखने वाले बन जाएंगे, और उसके बाद फिर ख्वाबों की तबीर मिलेगी, उसके बाद फिर आपको गैर जबान मिलेगी, गैर जबान के बाद फिर आपको तर्जमा मिलेगा, तर्जमे के बाद फिर आपको क्या होगा जी, नबुवत मिलेगी, नबुवत के बाद आपको क्या होगा जी, इल्मियत का कलाम मिलेगा, इल्मियत कलाम के बाद आप क्या करेंगे जी, रोया होगी, रोया के कलाम के बाद आप क्या करेंगे जी, तर्जमा करने वाले बन जाएंगे। और ये सारी बातों को वो क्या करते हैं, आगे रख देते हैं, और बंदा बूढ़ा हो जाता है, सारी जिंदगी गोडे उसके खराब हो जाते हैं इस बात में सजदा करते करते, और उसे समझ नहीं आती कि जिस घड़ी उसने यीशु को अपना आसमानी बाप के वसीला से निजात दहिंदा कबूल किया वो उसी वक्त उसका क्या बन गया जी, रूह कुद्दस का मकदस बन गया। यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने शिगिर्दों को, मैं जाता हूं और तुम्हें रूह मैं पैमाने में नहीं दूंगा बल्कि क्या करूंगा जी, तुम्हें अपना रूह दूंगा और तुम में से जिंदगी की पानी की नदियां जारी होंगी। यीशु मसीह ने क्या सी कि रूह कुद्दस के टप दे विच मैं 2 की डोंगे तुहानू दे दिया करा। आज बहुत सी ऐसी तालीम देते कि रूह कुद्दस तुहानू दो मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। बाइबल मुकद्दस में एक भी हवाला नहीं मिलता। चैलेंज करें उन लोगों को जो आपको कहते हैं कि जी रूह कुद्दस आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, उसे कहें भाई कहां पर हवाला मिलता है, एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। जब भी बाइबल मुकद्दस में किसी को रूह मिला है तो वो कहता है कि वो रूह नाप नाप के पैमाने में नहीं देता, बल्कि क्या लिखा है, जिस घड़ी तुमने उसके वसीला से खुशखबरी के पैगाम को सुना खुदा के पाक रूह की मोहर तुम पर लगी। क्योंकि अगर हम इसे कहें कि मोहर लगी यानी कि पाक रूह की लागत आ गई तो बाकी धड़कते होर चला गया, गलत तफसीर है। पाक रूह की आंखें मिल गई और बाकी कुछ नहीं मिला, गलत तफसीर है। अगर इस पर बात की जाए, जितनों ने इसे कबूल किया खुदा ने उन्होंने अपने फर्जंद यानी कि एक महीने नहीं बन फर्जंद बनाया, ऐसा लिखा जी, जितनों ने इसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। ये लफ्ज जो हक है ये क्या है जी, अदालती जुमला है जो यूहन्ना इस्तेमाल करता है कि तुम्हारे बारे में खुदा ने अपनी अदालत में मुकम्मल तौर पर लिखकर डिक्लेयर कर दिया, दिस इज माय सन एंड डॉटर इन क्राइस्ट जीसस, ये मेरी बेटी ये मेरा बेटा है यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ये नहीं कहता तो कि हफ्ते मेरी बेटी दे बेटा वा, हाँ उस तो बाद मैनू तो पता ही नहीं, जब आप और मैं किसी के साथ कोई रिश्ता जोड़ते हैं, यानी कि खामुंद और बीवी का, तो वो कैसा होता है? एक महीने का ज़िंदगी। अगर किसी के हाँ से बेटा लेते हैं तो वो क्या है? 15 दिन का बेटा होता है? नहीं। क्या लिखा है? हमने उस रूह के वसीला से डर और खौफ नहीं बल्कि ले पालक होने का हक पाया, इसीलिए हम उसे कहते हैं अब्बा। एक महीने ले कभी किराएदा अब्बा या रेंट दे अब्बा मिलता देखा नहीं। सो अगर हमारा आसमानी बाप हमें रेंट पर अपनी शिनाखत नहीं देता, तो फिर ऐसी तालीमात को मत सुने जो आपको कहते हैं कि रूल को दस लीता होगी जी, सारी हयाती गोडे गिराने पैणगे। और रूल को दस अंदर कहता ओ मैं तो अंदर हाँ, वो मेरी सुनो तो सही, वो मेरे अल गौर तो करो सही। असं कहने रू आ वह कहता मैं गया कितों, रू आ रू आ रू कहता है मेरी सुनो, और बहुत दफा हम उसकी सुनते ही नहीं। इसलिए कौन रूल कुदस का मकदस बनेगा? जो यसु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है। और मेरी दुआ है कि यहाँ पर सब ने अपना शख्सी निजात दहिंदा यसु को कबूल किया हुआ है। मुझे याद है कि ब्लू होटल में टीचर मोनिया ने, बहुत से दूसरे लोगों ने, तकरीबन 100 से ज़्यादा या को 65-66 लोगों ने उस घड़ी क्या किया था? यसु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया था। उसके बाद कुछ दिन पहले टीचर मैबिश ने अपना खुलेआम बगैर किसी प्रेशर के क्या किया है जी, इजहार किया है कि यसु मसीह मेरा निजात दहिंदा है। वो क्या है जी? जो कोई ये इकरार करता है आप में से, मैं और जे भी हैं, वो क्या है? हम रूहुल कुद्दस का मकदस है, पाक रूह के रहने की जगह है, पाक रूह हमारे अंदर रहता है। और उसके बाद लोग एक और झूठ बोलते हैं, तानू पाक रूह का बपतिस्मा लैन तो पहले की करना चाहिए जी, पानी का बपतिस्मा लेंगे तो आपकी निजात क्या हो जाएगी? पक्की हो जाएगी। बाइबल इसकी भी तालीम नहीं देती। पानी का बपतिस्मा क्या है जी? निजात पाने के बाद वो इजहार है शिनाखत का। जैसे हम मंगनी करते हैं जी, मंगनी हो गई है और अब क्या होगा जी? निकाह होगा, और निकाह सबके सामने क्या है जी? इजहार हो जाएगा जी कि फला बंदा फला बंदी क्या है जी? जीवन साथी हैं, जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको कोई जुदा नहीं कर सकता। सो रूहुल कुद्दस हमें मिल जाता है, उसके बाद शिगिर्दियत के लिए क्या है जी? पानी का बपतिस्मा क्या है जी? शिगिर्दियत के लिए खुले नाम क्या है जी? इजहार है कि जो कुछ हमारे अंदर हुआ है उसका खुलेआम क्या है जी? इकरार है कि मैं यसु का और यसु मेरा है। ये ऐसा जुमला हम कह सकते हैं जैसा रूत ने कहा था अपनी सासू माँ को, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ तू जाएगी मैं जाऊँगी, जहाँ तू मरेगी मैं मरूँगी। ये खामद और बीवी के लिए है, लेकिन ईमानदार ये इकरार यसु के लिए कह सकते हैं, यसु मैं तेरा हूँ, तेरे लिए जीऊँगा, तेरे लिए मरूँगा, तेरे लिए सब कुछ करूँगा, तू ही मेरा क्या है जी? यहोवा खुदा है। ये है बपतिस्मे के क्या है जी वक्त हम कह सकते हैं कि हम पानी में जाते हैं, मसीह के साथ दफन हो गए, पानी से बाहर आए, मसीह के साथ क्या हुए जी? जिंदा हो गए। और हमें नई पोजीशन जो खुदा ने पहले दी है वो क्या है? मसीही मुकाम, हमारा दर्जा, हमारी हालत कि हम उसके बेटे बेटियां और उसका क्या है जी? मकदस है। तो इसलिए बहुत से झूठों से हमें बचने की जरूरत है, क्योंकि भेड़ के रूप में भेड़िया आएगा और क्या करेगा जी? कलीसिया को तबाह करेगा। इसलिए खुदा का बंदा क्या कहता है? वही खुदा की मलकियत। आप क्या हैं जी और मैं क्या हूं? खुदा की मलकियत। मलकियत किसे कहते हैं? जो खरीदा हुआ हो। पहला ग्रंथियों 6 बाप उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मकदस हो, और तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। और 20वीं आयत में लिखा है अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। खरीदा गया क्या है जी? किसी और की मलकियत है। हमें गुनाह की मंडी में से जब खुशखबरी का पैगाम सुना के कोई है ایسا سوداگر آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آیا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ یہ وہ مثال ہے جو مثال ہمیں متی کی انجیل میں ملتی ہے کہ ایک بندے نے کیا کیا جی، کھیت خریدا اور کھیت کو دیکھا کہ اس کھیت میں بڑا خزانہ ہے، اس نے اپنا سب کچھ بیچ باچ کر کیا کیا، اس کھیت کو خرید لیا کیونکہ اس میں جو خزانہ تھا۔ یہ تمثیل کیا ہے، ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یسوع مسیح نے کیا کیا، آسمان سے زمین پر آیا اور کھیت کس کو کہا گیا ہے جی؟ دنیا کو، متی 13:13 کے مطابق۔ اور خزانہ کیا ہے جی؟ ہم وہ لوگ ہیں جس کو اس نے دیکھا کہ اس کی قیمت کیا ہے جی، بہت اہم ہے، اس نے اپنا آسمان چھوڑا، اپنے آپ کو بیچ کر ہم کو خرید لیا۔ ہمیں گناہ کی منڈی میں جب بولی لگائی جا رہی تھی، 1 پیسہ 2 پیسہ 3 پیسے 4 پیسے 5 پیسے، یہ ابدیت کے لیے کیا ہے جی؟ غلام ہے۔ یسوع مسیح سین پر آتا ہے، اسٹیج پر آتا ہے اور کہتا ہے اس غلام کے لیے، اس غلام کے لیے، اس غلام کے لیے، یہ تمام گناہ کے غلام ہیں، ان کے لیے میں اپنے آپ کو دیتا ہوں تاکہ ان سب کو خرید لوں۔ اور آگے سے یہ غلام نہیں، یہ آزاد ہیں، میرے خون خریدے ہیں، اس لیے ان کو میں نیا مرتبہ، نئی پہچان، نئی آن کیا دوں گا۔ ان کا جو اعلیٰ مرتبہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ تم روح القدس کا مقدس ہو، تم اپنے نہیں قیمت سے خریدے گئے ہو، اس لیے اپنے بدنوں سے کیا کرو جی؟ خدا کا جلال ظاہر کرو۔ روح القدس ہماری کیا ہے جی؟ روح القدس بیانے میں کیا ہے جی؟ ہم جو اس کی ملکیت ہیں، اس کے لے پالک، اس کی کیا ہے جی؟ پراپرٹی ہیں، جسے خدا نے یسوع مسیح میں خریدا، اس کی جائیداد ہے۔ کیا ہے جی؟ لکھا ہے مخلصی کے دن کے لیے، 14 آیت میں لکھا ہے، اور وہی خدا کی مخلصی، ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا کیا ہے جی؟ بیانہ ہے، بیانہ ہے۔ روح القدس ادائیگی میں دے دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بعد اور بہت سی برکات ہیں جو ابھی ہم تک واضح نہیں ہوئی۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ اگر ہم خدا کو جلال دینا چاہتے ہیں تو ہمیں یسوع مسیح کے کلام کو صحیح طریقے سے سمجھنا، پڑھنا اور قبول کرنا ہوگا، ورنہ ابلیس خوش ہوگا۔ ابلیس خوش ہوگا جب وہ کہے گا ہاں جی، انہوں نے خوشخبری کا پیغام کیا ہی، 10 حکمات عمل کر کے اس تو بعد اپنی جنی آمدن سارا دے دے، تو اس تو بعد گوڈے کڑیس دے دے رو، تو پھر یقین نہیں کہ اسی جنت چ جاواں گے، دو جنت چ جاواں گے۔ ابلیس اس بات سے کیا ہوتا ہے جی؟ خوش ہوتا ہے۔ جب ہم سے پوچھے آپ کون ہیں، ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں۔ آپ کون ہیں، ہم مسیحی ایلچی ہیں۔ آپ کون ہیں، میں نئی مخلوق ہوں۔ آپ کون ہیں، میں خدا کا بیٹا ہوں۔ آپ کون ہیں، میں خدا کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہیں، میں مسیح میں اس کا عزیز ہوں، میں اس کا خون خریدا ہوں۔ بہت سال پہلے ایک پولیس والا آیا اور دیوار پر جو چرچ کی ہے وہاں پر لکھا ہوا تھا، دوسرا کرنتھیوں اس کا غالباً 2 کی اس کی 17:18 آیت لکھی ہوئی ہے کہ تم کو میں اب سے کیا کہوں گا جی؟ یتیم اور تنہا نہیں چھوڑوں گا، تمہارا کیا ہوں جی؟ میں باپ ہوں۔ ایسی آیت لکھی ہوئی ہے۔ اور ایک ایس ایچ او نیا نیا آیا اور اس نے دیکھا اور اس نے کہا کہ میں بھی مشن اسکول سے پڑھ کر گیا ہوں، آج میں جو ایس ایچ او بنا ہوں وہ کرسچن اسکول مشن سے پڑھ کر گیا ہوں، تو بھائی یہ کیا ہے؟ تو میرا ابو وہاں پر کھڑا، اس نے اسے بتایا کہ جی یہ 316 گھر ہے، یہ 316 گھر ہیں جہاں پر بچوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، ساتھ میں چرچ ہے۔ اور اس ایس ایچ او نے میرے ابو سے پوچھا کہ آپ کون ہو، اور میرے ابو نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اس نے کہا کہ جی گلگتہ کی پہاڑی پر 3 صلیبیں تھی اور دائیں اور بائیں 2 تھے، ان 2 میں سے میں 1 ہوں جو بچ گیا اور فردوس کا کیا ہو گیا؟ مالک ہو گیا۔ اور وہ پولیس والا اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہ گیا کہ اس نے بات کہاں سے کی ہے۔ ہم اپنی پہچان کو نہ بھولیں کہ ہم کون ہیں مسیح میں۔ میرے ابو نے اسے کہا کہ میں وہ ڈاکو ہوں جو بچ گیا، جس کو مسیح نے کہا تم آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم فردوس کے مالک ہیں، ہم پر عالم روا کے دروازے کیا ہیں جی؟ بند ہیں، ہم کو وہ روک نہیں سکتے، ہم عالم بالا کے رہنے والے شہری ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے خدا کی ستائش ہو، کیونکہ ہم اس کی میراث کا کیا ہیں جی؟ وہ حصہ ہیں جو اس زمین پر کیا کریں گے جی؟ اس کے نام کو جلال دیں گے۔ روح القدس کب ملتا ہے؟ جب کوئی یسوع پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے 6 مہینے انتظار نہیں کرنا پڑے گا, وہ اسی وقت مل جاتا ہے. اور روح قدس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا جی؟ ساری خوراک کی ہے جی, اسی موٹے تازے پتلے دبلے ہونے کی کھانے ہیں خوراک, ہماری جسمانی ضرورت کے لیے کیا ہے جی؟ جسمانی خوراک. اور روح کے لیے روحانی خوراک کیا ہے جی؟ روح کا کلام. جتنا زیادہ روح کا کلام ہم کھائیں گے ہماری روح اتنی ہی سیر ہوگی, اور ہم روح کی باتوں کو سمجھیں گے اور روح اس بات کو استعمال کرے گا. آئے ہم خدا کے جڑ چکیں اور خداوند خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں کہ اس نے ہمیں اپنے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا ہے تاکہ ہم اپنے بدنوں سے اس کا جلال ظاہر کریں. خدا باپ آج کی شام سب کو چھو, بڑی برکت دے, تیرا نام عزت اور جلال پائے اور تیرے نام کی تعریف ہو, تیرے نام کی حمد, تیرے نام کی ستائش ہو. سارا جلال تیرے بیٹے ہمارے منجی یسوع مسیح ناصری کے نام کو ملے. ہم سب کم ہوتے جائیں, تو بڑھتا جائے, تیرا نام عزت اور جلال پائے, یسوع کے نام میں. آمین, آمین, آمین.